जमानों की उमंग, बाब नंबर 28। मत्ती महसूल लेने वाला। फलस्तीन में रूमी हकूमत के अफसरान में महसूल लेने वालों को हकूमत के दूसरे अफसरान की निस्बत हिकारत की निगाह से देखा जाता था। हकीकत यह थी कि बदेशी हकूमत ने यहूदियों पर महसूल आयत कर रखे थे। वो यहूदियों के लिए मुसलसल अजाब बन चुके थे। ये जिजिये उन्हें तवातुर से याद दिलाते रहते थे कि वो कोई खुद मुख्तार कौम नहीं है। महसूल लेने वाले रूमी हकूमत के हाथ में सिर्फ आलाकार ही नहीं थे कि उन्हें लोगों से जिजिया जमा करके दें, बल्कि वो अवाम पर जबर करके खुद को मालदार बनाने की गर्ज से उनसे मुकर्ररा रकम से ज्यादा ईंट लेते थे। और वो यहूदी जो महसूल जमा करने के ओहदे को कबूल कर लेते थे, वो यहूदी कौम की नज़र में गद्र और लफंगे ख्याल किए जाते थे। नीज बाकी यहूदी कौम उनके बारे सोचती थी कि ये अपने मजहब से मुनहरिफ हो गए हैं, लिहाजा सोसाइटी उन्हें पाजी का दर्जा देती थी। मत्ती इसी तबका से ताल्लुक रखता था। यसु ने मत्ती से पहले गैंसर्त के इलाके से चार और शागिर्दों को बुलाया था। मत्ती की बलाहट कान के बाद होनी। फरीसी मत्ती को उसके पेशे के लिहाज से जांचते और परखते थे, जबकि यसु ने उनके दिल पर नजर करके देखा कि उसका दिल सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार है। मत्ती ने यसु मसीह की मनादी सुनी थी, और जब खुदावन के रूह ने उसे उसकी गुनाह भरी जिंदगी के बारे कायल किया तो उसने यसु की मदद की आरजू की। ताहम वो इस बात से खायफ हुआ कि चूंकि शरा के मुअल्लिम और फरीसी खुद को निहायत मुकद्दस समझते हैं और दूसरों से अलग थलग रहते हैं, तो शायद ये अजीम उस्ताद भी मेरी तरफ मुतवज्जे ना हो। क्योंकि मत्ती यसु को भी फरीसियों और शरा के मुअल्लिमों की मानिंद ही ख्याल करता था। एक दिन वो महसूल की चौकी पर बैठा था और उसने मसीह को अपनी तरफ आते देखा, मगर उस वक्त उसकी हैरानगी की कोई हद न रही जब यसु ने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। मत्ती फौरन सब कुछ छोड़कर यसु के पीछे हो लिया। ना उसने कोई सवाल किया, ना ही कोई हिचकिचाहट, और ना ही उसने पूछा कि ये काम छोड़कर मैं क्या करूंगा, बल्कि यसु के साथ होना ही उसके लिए काफी था, क्योंकि अब वो यसु का कलाम सुन सकता और उसके साथ मिलकर काम कर सकता था। जो शागिर्द पहले बुलाए गए थे उनको भी कोई वादा न दिया गया। जब पतरस और उसके साथियों को बुलाया गया तो वो अपनी कश्तियों और जालों को छोड़कर फौरन उसके पीछे हो लिए। उनमें बाज ऐसे शागिर्द भी थे जिनके शानों पर दूसरों की कफालत की जिम्मेदारी थी, मगर जब यसु ने उन्हें दावत दी तो वो बगैर हिचकिचाहट के उसके पीछे हो लिए। उन्होंने बिल्कुल ना पूछा कि हमारे खानदान और हम बगैर काम के क्यों कर जिंदा रह सकेंगे। जब उन्हें बलाहट दी गई तो उन्होंने वफादारी दिखाई, और बाद में जब यसु ने उनसे पूछा कि जब मैंने तुम्हें बिटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था तो क्या तुम किसी चीज के महताज रहे थे, उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। लूका 35:22। पतरस की गुर्बत और मत्ती की अमारत में दोनों के सामने एक जैसा इम्तहान था। दोनों को एक जैसी कुर्बानी देना पड़ी। जिस वक्त मछेरों का जाल मछलियों से भरपूर था, दीरीना जिंदगी की उमंगें जवान और अरफा थीं, उस वक्त यसु ने उन शागिर्दों को बुलाया कि यहीं सब कुछ छोड़कर इंजील की मनादी संभालो। इसी तरह हर रूह का इम्तहान लिया जाता है। आया उसकी आरजू उस आरजी दुनिया के लिए मजबूत है या यसु की खिदमत करने के लिए? उसूल सबके लिए यकसा है कि जब तक कोई भी शख्स खुदा की खिदमत में बदलो जान शमूलियत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। वो शख्स हर गज खुदा की खिदमत में कामरानियां हासिल नहीं कर सकता जो यसु मसीह की खातिर उस दुनिया की जाहों हशमत को कूड़ा किरत ख्याल नहीं करता। वो शख्स मसीह खुदावन का शागिर्द हो ही नहीं सकता जो कुल्ली तौर पर खुद को खुदा के हवाले नहीं कर देता। अगर वो कुछ बचा रखता है तो वो उसके काम के लायक नहीं। जब इंसान अजीम नजात की कदर करेंगे तो वो खुद इनकारी जो यसु मसीह की जिंदगी में पाई जाती थी उनकी जिंदगी में भी देखी जाएगी। फिर जहां कहीं वो उन्हें ले जाना चाहेगा वो बखुशी उसकी पैरवी करेंगे। मत्ती को मसीह यसु का शागिर्द बनने के लिए जो बलाहट दी गई उससे अवाम में गैज़ो गज़ब और नफरत की लहर दौड़ गई। मजहबी रहनुमाओं के नज़दीक यसु का एक महसूल लेने वाले को कबूल करना मजहब, समाज और कौमी रसूम की एहानत के मुतरादिफ थी। उन्होंने अवाम को यसू के खिलाफ उभारे की अजहद कोशिश की। उनका ख्याल था कि अवाम यसू को यकसर रद्द कर देंगे। महसूल लेने वालों के दिलों में यसू के लिए बड़ी जगह बन गई। उनके दिल इलाही मौलिम की तरफ खिंच गए। इसी खुशी में मत्ती अपने तमाम पुराने दोस्तों और कारगुजारों को यसू के कदमों में लाना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने अपने घर पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया, जहां उसने अपने दोस्त और अहबाब और रिश्तेदारों को मद्दू किया। यहां सिर्फ महसूल लेने वाले ही न थे, बल्कि उसने उनको भी बुलाया जिनको अवाम मुश्तबा निगाहों से देखते थे। ये ज़ियाफ़त यसू के एजाज में दे गई। उसने बगैर हिचकिचाहट उस दावत को कबूल कर लिया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि फरीसियों की उससे दिल आजारी होगी। यसू मेहमान खुसूसी की हैसियत से महसूल लेने वाले की ज़ियाफ़त में तशरीफ फरमा हुआ। अपनी गमगुसारी और वहां मौजूद लोगों से मेल जोल के जरिए उसने तासुर दिया कि वो हर एक को प्यार करता है और उसे सबकी कद्र है। उनके प्यासे दिलों पर उसका कलाम बरकत बनकर गिरा। जिनको मुआशरे ने धुतकार रखा था, उनमें नई जिंदगी की उम्मीद उजागर हो गई। यहां इस ज़ियाफ़त में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो मसीह यसू के आसमान पर सूद फरमाने से पहले उसकी तालीम से कायल न हुए। जब रूहुल कुदस का नुजूल हुआ, वर एक दिन में 3,000 के करीब मसीह के कदमों में आ गए थे। उनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने महसूल लेने वाले की मेज से पहली बार मसीह की मुबारक जबान से सदाकत का कलाम सुना। उनमें मत्ती महसूल लेने वाला और उसके कई दूसरे जानिसार दोस्त इंजील के पयंबर और मुबशिर बने और उम्र भर अपने आखा के नक्श कदम पर चलते रहे। जब शरा के मौलिमों को पता चला कि यसू मत्ती महसूल लेने वाले की ज़ियाफ़त में मौजूद है, तो यसू पर इल्ज़ाम लगाने का उन्हें अच्छा मौका हाथ लगा। मगर उस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने शागिर्दों का इंतखाब किया। वो ख्याल करते थे कि अगर हम शागिर्दों को उभारेंगे, उनकी गैरत को ललकारेंगे, तो वो ज़रूर अपने आका को तर्क कर देंगे। उनकी चाल ये थी कि हम शागिर्दों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, इसके इवज शागिर्द यसू को इल्ज़ाम देंगे। इबलीस का हमेशा वे यही तरीक़ा वारदात रहा है। चुनाचे रब्बियों ने शागिर्दों से पूछा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनागारों के साथ क्यों खाता है? यसू ने शागिर्दों के जवाब देने से पहले खुद फरमाया, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर उसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं राजबाजों को नहीं बल्कि गुनागारों को बुलाने आया हूं। मत्ती 12:9-13। फरीसी दावे करते थे कि वो खुद पाक, तंदुरुस्त, सलामत हैं, इसलिए उन्हें तबीब की जरूरत नहीं, जबकि वो गैर अकवाम और महसूल लेने वालों को गुनागार समझते थे। फरीसों के ख्याल के मुताबिक गुनागारों की रूह बीमार ज़दा है, तो फिर एक तबीब होने की हैसियत से क्या उसका काम नहीं था कि वो हाजतमंदों के पास जाए? बेशक फरीसी ये ख्याल करते थे कि हम दूसरे तमाम लोगों से बेहतर हैं, मगर हकीकत ये थी कि उनकी हालत उन गैर कौम वालों और महसूल लेने वालों से कहीं बदतर थी जिनको ये रद्द कर चुके थे। चूंकि महसूल लेने वाले फरीसियों की निस्बत कम मुतासिब और हट धर्म थे, इसलिए फरीसी सच्चाई को कबूल करने को तैयार न थे। बस यसू ने उन पर वाजे करना चाहा कि बेशक खुदा का पाक कलाम तुम्हारे पास है, मगर तुम उसकी रूह से कुल्ली तौर पर नावाकिफ हो। इस पर फरीसी वक्ती तौर पर खामोश हो गए, मगर उनकी दुश्मनी यसू के साथ मजीद बढ़ गई। इस बार उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों को यसू मसीह के खिलाफ भड़काया। इन फरीसियों ने यूहन्ना के मिशन को कबूल नहीं किया था, बल्कि उसकी सादा आदात परहेजगारी की जिंदगी और मोटे खिरदरे कपड़ों की वजह से उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसने उन्हें रयाकार कहा था। इसलिए उन्होंने उसकी मुनादी की मुखालफत की थी और चाहा कि लोगों को उसके खिलाफ इश्तियाल दें। ताहम ठट्ठा उड़ाने वालों के दिलों को रूहुल कुदस ने तहरीक दी और वो अपने गुनाहों के लिए कायल हुए। मगर फरीसियों ने खुदा की मशवरत को ठुकरा दिया और ऐलानिया कहने लगे कि यूहन्ना में बदरू है। अब जब यसू लोगों के साथ मिलता जुलता और उनके साथ खाता पीता था, तो यही फरीसी कहने लगे कि ये खा और शराबी है, और खुद अपने मुंह के कलाम से कसूरवार ठहरे। जैसे इब्लीस नूरानी फरिश्तों का रूप धार कर खुदा की गलत नुमाइंदगी करता है, उसी तरह खुदा के पयंबरों की
उन झूठे लोगों ने नुमाइंदगी की।
फरीसी इस बात को भूल रहे थे कि मसीह यीशु गुनागारों और महसूल लेने वालों के साथ इसलिए खाता पीता है ताकि जो जुल्मत के साया में बैठे हैं उन्हें आसमानी नूर से मुनव्वर करे। वो ये देख ही नहीं रहे थे कि यीशु मसीह के लबों से निकला हुआ हर लफ्ज बीज की मानिंद है, जो बढ़कर खुदा के जलाल के लिए फलदार साबित होगा। इसलिए फरीसियों ने इरादा कर लिया था कि वो नूर को कबूल नहीं करेंगे। अगरचे उन्होंने यूहन्ना के मिशन की मुखालफत की थी, मगर अब वो उसके शागिर्दों की दोस्ती के खाहां थे ताकि उनके साथ मिलकर यीशु की मुखालफत करें। यहां उन्होंने ये मौकफ इख्तियार किया कि यूहन्ना और उसके शागिर्द महसूल लेने वालों और गुनागारों के साथ नहीं खाते पीते, इसलिए कि यूहन्ना मुकद्दस शख्स है, मगर तुम कदीम नबियों की रिवायतों को तोड़ते हो। यूहन्ना के शागिर्द उस वक्त सख्त दिलगीर थे। ये इससे पहले की बात है जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को यीशु के लिए पैगाम देकर भेजा था। उनका प्यारा उस्ताद जेल में था। उन्होंने ये दिन आहुनाला में बसर किया था। मसीह उसे छुड़ाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था, और ऐसे मालूम होता था जैसे वो यूहन्ना की तालीम के मुखालिफ हो। उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता था कि अगर यूहन्ना खुदा की तरफ से भेजा गया था तो यीशु मसीह और उसके शागिर्दों का काम यूहन्ना से क्यों कर अलहदा हो सकता है। यूहन्ना के शागिर्द यीशु के मिशन को सफाई से ना समझते थे। वो गुमान करते थे कि फरीसियों ने जो इल्जामात यीशु पर लगा रखे हैं जरूर उनकी कोई बुनियाद होगी। रबियों ने उन्हें किसी कानून और जाब्ते बताए। ऐसे मालूम होता था जैसे वो ऐन शरीयत के मुआफिक हैं। मिसाल के तौर पर फरीसियों के शागिर्द हफ्ता में एक बार रोजा रखते थे, और ये नेकी और भलाई का काम था। बल्कि उनमें बाज लोग ऐसे भी थे जो हफ्ता में दो बार रोजा रखते थे। यूहन्ना के शागिर्द भी ऐसा ही करते थे। उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। लूका 33:5। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी दानिशमंदी और नर्म मिजाजी से जवाब दिया। उसने उनके नारवा रोजे की मंतक की दुरुस्ती करने की बजाय उन्हें अपने मिशन के बारे आगाह किया, और उसने यूहन्ना की वही मिसाल इस्तेमाल की जो यूहन्ना ने मसीह के बारे की थी। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। यूहन्ना 29:3। यूहन्ना के शागिर्द अपने आका के इस कलाम से अच्छी तरह वाकिफ थे।
इसलिए यीशु ने मजीद फरमाया, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखो सकते हो? आसमानी शहजादा अपने लोगों के साथ था। खुदा ने यह सबसे बड़ी बख्शिश दुनिया को अता की थी, और यह गरीबों के लिए खुशी का मकाम था क्योंकि यीशु उन्हें अपनी बादशाही का वारिस बनाने आया था। अमीरों के लिए इसलिए खुशी का मकाम था क्योंकि वो आया ताकि उन्हें सिखाए कि अबदी दौलत को किस तरह महफूज करना है। तालीम याफ्तगान के लिए इसलिए खुशी का मकाम था कि वो आया ताकि वो सदाकतें जो बनाई आलम से पेशतर की थीं अब पर से पर्दा उठाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर खुश हुआ। उन शागिर्दों की खुशी का क्या मकाम होगा जिनको ये शरफ हासिल हुआ कि मुत्तजी दो जहां के साथ साथ चले। लिहाजा उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो रोजा रखते और मातम करते। उन्हें तो यस्सू के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करना था ताकि जो मौत के साया की वादी में बैठे हैं उन्हें मुनव्वर कर सके। इस रोशन पहलू के साथ यस्सू ने सलीब के साये को भी उन पर आश्कारा कर दिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम तो रोगे और मातम करगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। यूहन्ना 20:16। अब वो जिंदा होगा, उनकी खुशी दुबाला होगी, और जब वो सूद फरमा जाएगा ये तन्हा रह जाएंगे, मगर रूहुल कुदुस के जरिए वो उनके साथ होगा, इसलिए वो मातम न करेंगे। इब्लीस की यही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया को तासुर दे के उनसे धोखा हुआ है, मगर उन्हें ईमान के जरिए ऊपर हैकल को देखना था जहां उनकी खातिर मसीह खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्हें सिर्फ रूहुल कुदुस पाने के लिए अपने दिलों को वार रखना था। अभी वक्त आने वाला था जब उन्हें आजमाइशों का मुकाबला करना था और उन्हें हाकिमों और अदालत वालों के सामने पेश होना था। जब यस्सु मसीह उनके साथ न था और उन्हें दूसरा मददगार रूहुल कुदुस भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये वो वक्त था जब उनके लिए रोजा रखना और मातम करना मुनासिब था।
देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह को रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? यसाया 5:58-6। हकीकी रोजा महज रस्मी तो नहीं होता। किताब मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद ले किस तरह के रोजे का इंतखाब किया। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी। यसाया 6:58-10। ये खुदावन यीशु के काम की रूह है जो वो करता था। उसकी पूरी जान दुनिया को बचाने के लिए बतौर कुर्बानी थी। ख्वाह बयाबान में रोजा की हालत हो, ख्वाह मत्ती के घर ज़ियाफ़त का मौका, दोनों सूरतों में वो अपनी जिंदगी को उनके लिए कुर्बान करता है जो खो चुके हैं। महज बदन को दुख देने या मातम करने का नाम रोजा नहीं, बल्कि जानसारी और बह रजा और रगबत अपने आप को खुदावन के मती करने का नाम रोजा है। यूहन्ना के शागिर्दों को जवाब देने के दौरान उसने उन्हें एक तमसील सुनाई कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पेवंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पेवंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। लूका 26:5। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैगाम को पुरानी रिवायात और तवहुमात के साथ इकट्ठे नहीं जाना था। फरीसों की रिवायात और रसूम को यूहन्ना के पैगाम के साथ मिलाने की कोशिश बेसूध थी। दोनों एक दूसरे के साथ मेल क्यों कर खा सकती थीं? इस तरह मसीह यस्सु की तालीम के उसूलात फरीसियों की तालीम के साथ मेल नहीं खा सकते। जो तालीम यूहन्ना ने दी वो यस्सु की तालीम के मुतजाद नहीं हो सकती थी। यस्सु ने इसी तरह एक और तमसील पेश की। कोई शख्स नई में पुरानी मुश्कू में नहीं भरता, नहीं तो नई में मुश्कू को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मुश्कें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई में नई मुश्कू में भरना चाहिए। लूका 27:5-39। वो मुश्कें जिनमें नई में रखी जाती थीं, वो थोड़े अरसा के बाद पुरानी खुश्क और खस्ता हो जाती थीं। इसलिए दोबारा उन्हें उसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस तमसील के जरिए मसीह ने यहूदी लीडरों की हालत की निशानदेही की थी। यहूदी लीडर्स, हाकिम, काहिन और फरीसी मुद्दतों से एक जैसी रस्मों और रवायतों के आदि हो चुके थे। उनके दिल खुश्क मुश्कों की तरह सुकड़ चुके थे। जितनी देर तक वो पुराने मजहब पर तसल्ली पजीर थे, उन्हें आसमानी सदाकतें वदियत नहीं की जा सकती थीं। वो समझते थे कि हमारी अपनी रास्तबाजी काफी है। वो किसी नए अंसर को अपने मजहब में दाखिल होने की हरगिज इजाजत न देते थे, बल्कि फरीसी खुद को सब लोगों से ज्यादा दानिशमंद समझते थे और वो सोचते थे कि उन्हें किसी तरह की हिदायत की जरूरत नहीं। उनका यह भी ख्याल था कि वो इतने रास्तबाज हैं कि उन्हें निजात की फिक्र नहीं, और उनका ख्याल था कि वो इतने बाइज्जत हैं कि उन्हें मसीह से आबरू हासिल करने की जरूरत नहीं। इसलिए मसीह उनको छोड़कर उनके पास गया जो खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार थे। वो बेइल्म मछेरों, गुनागार महसूल लेने वालों के पास गया। वो अवाम के पास मार्केट जैसी आम जगहों पर गया तो खुशी से उसकी सुनने को तैयार थे। उसने अपनी नई मैं के लिए नई मशकों को पा लिया। उन्हीं के जरिए उसने निजात का पैगाम दुनिया में फैलाया। अगर खुदा के फजल से यीशु के लोग नई मशकें बन जाएं, तो वो उन्हें नई मैं से लबरेज करने पर कादिर है। اگرچہ یسوع مسیح کی تعلیم کو نئی تعلیم کو نئی تعلیم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تاہم یہ نئی تعلیم نہ تھی بلکہ یہ وہ مکاشفہ تھا جس کی تعلیم ابتدا سے دی جا رہی تھی۔ مگر فریسیوں کے نزدیک خدا کی صداقت اپنی حقیقی خوبصورتی اور اہمیت کھو چکی تھی۔ ان کے نزدیک یسوع مسیح کی تعلیم ہر پہلو سے نئی تھی، وہ اسے بالکل نہ پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا۔ مسیح یسوع نے جھوٹی تعلیم کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صداقت کو تباہ کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ 39:5 لوکا۔ آبائی بزرگ و انبیاء کے ذریعے سے جو سچائی دنیا کو دی گئی، اس کو نئی خوبصورتی کے ساتھ یسوع نے اپنی تعلیم میں پیش کیا۔ مگر فقی فریسی نئی خوش ذائقہ اور بے قیمت میں کی خواہش نہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جب تک وہ اپنے ذہن و دماغ کو پرانی روایتوں اور حکایتوں سے پاک نہ کرتے، مسیح کی تعلیم کو کہاں جگہ دیتے۔ اس لیے وہ پرانی مذہبی رسوم سے چمٹے رہے اور خدا کی قدرت اور زندہ سچائی کو ٹھکرا دیا۔ شریعت پر مبنی مذہب کسی کو بھی مسیح تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ایسا مذہب محبت اور مسیح سے خالی ہوتا ہے۔ روزہ یا دعا جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے کی جاتی ہے، خدا کی نظر میں نفرت انگیز ہے۔ ہم اپنے کاموں سے نجات نہیں پا سکتے جیسے مسیح کے زمانہ میں تھا، آج بھی کم و بیش ویسا ہی ہے۔ فریسی اپنی روحانی خستہ حالی سے ناواقف تھے، اس لیے انہیں پیغام ملتا ہے، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ مکاشفہ 17:3-18۔
ایمان اور محبت وہ سونا ہے جو آگ میں تپایا گیا ہے، مگر بعض اسے کھو بیٹھے ہیں، اس کی چمک دمک ختم ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح کی راست بازی ان کے لیے ایسا لباس ہے جسے وہ نہیں پہنتے۔ ایسو کے لیے کہا گیا ہے، مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ مکاشفہ 4:2-5۔
شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ کو حقیر نہ جانے گا۔ زبور 17:51۔ اس سے پہلے کہ انسان خدا کی راست بازی سے معمور ہو، اسے خود کو خالی کرنا ہوگا۔ جب انسان خود انکاری کرتا ہے تو خدا اسے نیا مخلوق بنا دیتا ہے، نئی مشکوں میں نئی میں بھری جاتی ہے۔ خدا کی محبت ایماندار میں نئی زندگی بخشتی ہے۔ جو خالق خدا وند کی طرف تکتا رہتا ہے، جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، اس میں یسوع کی سیرت دیکھی جا سکتی ہے۔